السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم صالحات. ہر کلاس کے بعد یہ پڑھتے ہیں کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق ہے کہ اس پرفتن دور میں ہمیں دوبارہ اپنی بات کے لیے بٹھا دیتا ہے. آئیے ارحی کو مختوم میں سے فتح مکہ کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں. اسلامی لشکر مکہ کی راہ میں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اسلامی لشکر مکہ کی راہ میں. 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چھوڑ کر مکے کا رخ کیا. آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے. مدینہ پر ابو رحم غفاری رضی اللہ عنہ کی تقرری ہوئی. یعنی آپ جب بھی کسی سفر میں جاتے تھے تو اپنے پیچھے کسی کو بھی بڑا بنا کر آ جاتے تھے. یہ ہم سب کے لیے بھی عمل کا نقطہ ہے کہ اپنی کسی بھی ذمہ داری کو اگر ہم کسی وقت پورا نہ کر پائیں تو کسی دوسرے کے ذمہ ضرور لگانا چاہیے. بغیر بتائے اپنی جگہ سے غائب ہو جانا بہت سارے لوگوں کو نقصان دینا ہے. جخفہ یا اس سے کچھ اوپر آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ ملے. وہ مسلمان ہو کر اپنے بال بچوں سمیت ہجرت کرتے ہوئے تشریف لا رہے تھے. پھر ابوا میں آپ کے چچیرے بھائی یعنی چچا زاد بھائی کزن ابو سفیان بن حارث اور پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن امیہ ملے. آپ نے ان دونوں کو دیکھ کر منہ پھیر لیا کیونکہ یہ دونوں آپ کو سخت اذیت پہنچایا کرتے اور آپ کی حذف کیا کرتے تھے یعنی مذاق کرتے تھے طنز کرتے تھے. یہ صورت دیکھ کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے چچا زاد بھائی اور پھوپھی زاد بھائی ہی آپ کے یہاں سب سے بدبخت ہوں. ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان بن حارث کو سکھایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ اور وہی کہو جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے کہا تھا. کیا کہ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین. اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے. سورۃ یوسف کی آیت نمبر 91 ہے. کیونکہ آپ یہ پسند نہیں کریں گے کہ کسی اور کا جواب آپ سے عمدہ رہا ہو. چنانچہ ابو سفیان نے یہی کیا اور جواب میں فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. اسی سے آگے کی بات یعنی پچھلی آیت آپ یوسف کے بھائیوں نے کہی تھی تو یہاں یہ بات کہنے والے آپ کے رشتہ دار تھے اور اب اللہ کے نبی نے وہ بات کہی جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے نکلی. آیت 92 ہے. آج تم پر کوئی سرزنش نہیں اللہ تمہیں بخش دے اور وہ ارحم الراحمین ہے. اس پر ابو سفیان نے آپ کو چند اشعار سنائے جن میں سے بعض یہ تھے تیری عمر کی قسم جس وقت میں نے اس لیے جھنڈا اٹھایا تھا کہ لات کے شخص سوار یعنی گھوڑے پہ سوار شخص محمد کے شخص سوار پر غالب آ جائیں تو میری کیفیت رات کے اس مسافر کی سی تھی جو تیرا و تار یعنی اندھیری رات میں حیران و سرگرداں ہو. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ مجھے ہدایت دی جائے اور میں ہدایت پاؤں. مجھے میرے نفس کے بجائے ایک ہادی نے ہدایت دی اور اللہ کا راستہ اسی شخص نے بتایا جسے میں نے ہر موقع پر دھتکار دیا تھا. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ضرب لگائی اور فرمایا تم نے مجھے ہر موقع پر دھتکارا تھا. اب دیکھیے جب اس طرح کے ڈراپ سینز ہوتے ہیں نا تو اس طرح کی کافی چیزیں سامنے آتی ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کو بھی بنیاد نہیں بنایا کہ اختلافات بڑھے. ادھر سے کیا پتہ چلتا ہے اتنے حصے سے. آپ فاتح عالم تھے. آپ میں سے جو لوگ ہمارے ساتھ راہبر کامل سیریز سن رہے ہیں تو آج ہم نے فاتح کا روپ دیکھا آپ کا کہ آپ کیسے ایک فاتح کے روپ میں کامیاب لیڈر تھے. تو اس میں بھی ہم نے یہی دیکھا تھا کہ فتح کے نشے میں چور لوگ تو सबको ही रास्ते से हटाते हुए अपनी फतह के नशे में चूर होकर जुल्म सितम करते हैं और खून की नदियाँ बहाते हैं, लेकिन नबी सल्लम ने बग़ैर खून बहाए इतना बड़ा कारनामा अंजाम देकर दुनिया को दिखा दिया कि खून बहाने से ज़्यादा लोगों को मोहब्बत देने की ज़रूरत होती है। और इससे ये भी पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शख्स की बात सुनते थे और उसको इज़्ज़त भी देते थे। इसके बाद अगला मरहला क्या है कि मराव जहरान में इस्लामी लश्कर का पड़ाव, ये एक जगह है। अल्लाह के नबी ने अपना सफ़र जारी रखा। आप और सहाबाए कराम रोज़े से थे, लेकिन असफ़ान और कुदैत के दरमियान कदीत नामी चश्मे पर पहुंचकर आपने रोज़ा तोड़ दिया और आपके साथ सहाबाए कराम ने भी रोज़ा तोड़ दिया। इसके बाद फिर आपने सफ़र जारी रखा, यहाँ तक कि रात के इब्तदाई औकात में मराव जहरान यानी वादिय फ़ातिमा पहुँच कर नज़ूल फरमाया। वहाँ आपके हुक्म से लोगों ने अलग अलग आग जलाई। इस तरह 10,000 चूल्हों में आग जलाई गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हो को पहरे पर मुकर्रर फरमाया। चंद बातें नोट कीजिएगा इस हिस्से में से। अल्लाह के नबी ने रमज़ान के गुज़रने का इंतज़ार क्यों नहीं किया? याद रखिए, कुछ चीज़ें जितनी डिले की जाती हैं, जितनी पोस्टपोन की जाती हैं, वो उतनी ही कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं। आज का काम कल पर ना डालो, बड़ों ने ये कहा था, यहाँ भी यही बात है। दूसरी बात है कि दुश्मन को ज़रा सा भी मौका दे देना बात को बढ़ाना था। फिर अगली बात है कि अगर इस वक्त आप रमज़ान का नाम लेकर रुक जाते तो हो सकता है कि बाद में इसके और कितने बुरे नतायज निकलते। तो कुछ चीज़ें फौरी निपटाने की होती हैं। हालांकि बज़ाहिर देखा जाए तो अल्लाह के नबी को कोई किसी ने आकर हमले की दावत तो नहीं दी थी, लेकिन आप वादा शिकनी बर्दाश्त नहीं करते थे। उधर उनका अहद टूटा, इधर आपने लश्कर का रुख मक्का की तरफ किया। तो अल्लाह से ये दुआ कीजिए हमें भी सही वक्त पर सही फ़ैसले करने की अल्लाह ताला तौफीक दे। और एक बात तो ऑब्वियसली मालूम है कि फ़र्ज़ रोज़ा सफ़र में रखा तो जा सकता है, लेकिन अगर किसी भी वजह से तोड़ना पड़े तो तोड़ा भी जा सकता है। और फिर तोड़ा भी आपने, असर के करीब था। तो बहरहाल इसमें बहुत सारे मसाइल हैं। फिर एक और चीज़ ये जो 10,000 चूल्हों वाली है, इसको भी नोट कीजिएगा। इस्लाम का मिजाज ये है कि मुखालिफीन को मरूब किया जाए। बहुत सारे हथियार चलाने से ज़्यादा दिखाने के लिए होते हैं, तो यहाँ चूल्हों का जलाना उनके दिलों पर रोब डालना था। आज भी अगर आपको कहीं इस्लाम की इज़्ज़त, दीन की इज़्ज़त, किसी काम की इज़्ज़त दिखे तो आप थोड़ा सा इजहार कर सकते हैं लोगों को मरूब करने के लिए। अबू सुफियान दरबारे नबूवत में मर्राव ज़हरान में पड़ाव डालने के बाद हज़रत अब्बास रदी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ेद खच्चर पर सवार होकर निकले। इनका मकसद ये था कि कोई लकड़हारा या कोई भी आदमी मिल जाए तो इसे कुरैश के पास ख़बर भेज दें ताकि वो मक्के में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाखिल होने से पहले आपके पास हाजिर होकर अमान तलब कर लें। इससे क्या पता चलता है कि जब आप गालिब होते हैं ना, तो बहुत सारे लोग जो कई सालों से आपका रास्ता रोक रहे होते हैं ना, तो वो ख़ुद अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर होना चाहते हैं। और एक किस्म का आप कह लीजिए कि उनका रवैया ओफेंसिव से हटके डिफेंसिव होने लगता है। इधर अल्लाह ताला ने कुरैश पर सारी खबरों की रसाई रोक दी थी, इसलिए इन्हें हालात का कुछ इल्म ना था। अलबत्ता वो खौफ और अंदेशे से दो चार थे और अबू सुफियान बाहर जा जा कर ख़बरों का पता लगाता रहता था। चुनाचे इस वक्त भी वो और हकीम बिन हज़ाम और बुदैल बिन वरक़ा ख़बरों का पता लगाने की गरज से निकले हुए थे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु का बयान है कि बखुदा मैं रसूलुल्लाह के खच्चर पर सवार जा रहा था कि मुझे अबू सुफियान और बुदैल बिन वरक़ा की गुफ्तगू सुनाई पड़ी। वो बाहम रद्दो कदह कर रहे थे यानी बहस मुबासा। अबू सुफियान कह रहा था कि खुदा की कसम मैंने आज रात जैसी आग और ऐसा लश्कर तो कभी देखा ही नहीं। और जवाब में बुदैल कह रहा था ये खुदा की कसम बनू खुजाया हैं, जंग ने इन्हें छील कर रख दिया है। इस पर अबू सुफियान कह रहे थे खुजाया इससे कहीं कमतर और जलील हैं कि इनकी आग और इनका लश्कर हो। अब्बास कहते हैं कि मैंने उनकी आवाज़ पहचान ली और कहा अबू खंजला। इसने भी मेरी आवाज़ पहचान ली और बोला अबुल फजल। मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा क्या बात है मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। मैंने कहा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लोग समेत हाय कुरैश की तबाही, लोगों समेत ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लोगों समेत हाय कुरैश की तबाही वल्लाही। यानी एक किस्म का मरसिया पड़ा, एक ऐसी कैफियत रखी कि जिससे उनके दिल का दुख और गम समझ आता है कि ये तो अल्लाह के नबी आ गए। उसने कहा अब क्या हीला है मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। मैंने कहा वल्लाही अगर वो तुम्हें पा गए तो तुम्हारी गर्दन मार देंगे, लिहाजा इस खच्चर पर पीछे बैठ जाओ, मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलता हूँ और तुम्हारे लिए अमान तलब किए देता हूँ। इसके बाद अबू सुफियान मेरे पीछे बैठ गए और इनके दोनों साथी वापस चले गए। अब देखिए कि इस वाक़े से पता चलता है कि अबू सुफियान रदी अल्लाहु अन्हो ने कबूल इस्लाम में जो देर की तो उसकी वजह से इस किस्म के कमेंट्स उनके बारे में बोले और सुने जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला के हाँ तो दर्जे हैं बुलंद, जो देर से भी आए आ तो गया। फिर इससे एक और बात भी पता चलती है कि अरबों की जहानत बहुत थी। सिर्फ इतने चूल्हों का जलता देख कर उन्होंने लश्कर का अंदाज़ा लगा लिया कि ये बहुत बड़ा है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि अबू सुफियान जब मुसलमान हुए तो बहुत अच्छे मुसलमान हुए। कहते हैं कि जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो हया के सबब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ सर उठा कर ना देखा। आप इनसे मोहब्बत करते थे और इनके लिए जन्नत की बिशारत देते थे और फरमाते थे कि मुझे तवक्को है कि ये हमज़ा रदी अल्लाहु अन्हु का बदल साबित होंगे। जब इनकी वफ़ात का वक्त आया तो कहने लगे मुझ पर ना रोना, क्योंकि इस्लाम लाने के बाद मैंने कभी कोई गुनाह की बात नहीं कही। मुराद यह कि जा रहा हूँ तो गुनाहों से पाक हूँ। क्या खूबसूरत इनके सोचें थी, इनके क्या अंदाज़ थे। अल्लाह ताला हमसे भी राज़ी हो और हमें गुनाहों से पाक कर दे जब हम उसके पास पहुँचें। फिर इसी तरह हज़रत अब्बास रदी अल्लाहु अन्हो कहते हैं मैं अबू सुफियान को लेकर चला, जब किसी अलाव के पास से गुज़रता तो लोग कहते कौन है, मगर जब देखते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खच्चर है और मैं इस पर सवार हूँ तो कहते कि रसूलुल्लाह के चचा हैं और आपके खच्चर पर हैं। यहाँ तक कि मैं उमर बिन अब्दुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु के अलाव के पास से गुज़रा, उन्होंने कहा कौन है और उठकर मेरी तरफ आए। जब पीछे अबू सुफियान को देखा तो कहने लगे अबू सुफियान अल्लाह का दुश्मन, अल्लाह की हमद है किसने बग़ैर अहदो पैमान के तुझे हमारे काबू में कर दिया। यानी खुश हो गए कि हमने लड़ाई भी नहीं की और ये हमारे हाथ में आ गए। इसके बाद वो निकल कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़े और मैंने भी खच्चर को एड़ लगाई। मैं आगे बढ़ गया और खच्चर से कूद कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा घुसा। इतने में उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु भी गुस्सा आए और बोले कि अल्लाह के रसूल ये अबू सुफियान है, मुझे इजाज़त दीजिए मैं इनकी गर्दन मार दूँ। मैंने कहा अल्लाह के रसूल मैंने इसे पनाह दे दी है। फिर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर आपका सर पकड़ लिया और कहा अल्लाह की कसम आज रात मेरे सिवा कोई और आपसे सरगोशी ना करेगा। जब अबू सुफियान के बारे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने बार बार कहा तो मैंने कहा उमर ठहर जाओ रज़ी अल्लाहु अन्हु, अल्लाह की कसम अगर ये बनियादी बिन काब का आदमी होता तो तुम ऐसी बात ना कहते। उमर ने रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा अब्बास ठहर जाओ, अल्लाह की कसम तुम्हारा इस्लाम लाना मेरे नज़दीक ख़त्ताब के इस्लाम लाने से अगर वो इस्लाम लाते ज़्यादा पसंदीदा है, और इसकी वजह मेरे लिए सिर्फ ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक तुम्हारा इस्लाम लाना ख़त्ताब के इस्लाम लाने से ज़्यादा पसंदीदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्बास अबू सुफियान को अपने डेरे में ले जाओ, सुबह मेरे पास ले आना। इस हुक्म के मुताबिक मैं उन्हें डेरे में ले गया यानी ठहरने की जगह, और सुबह खिदमत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर किया। आपने इसे देखकर फरमाया अबू सुफियान तुम पर अफसोस कि अब भी तुम्हारे लिए वक्त नहीं आया कि तुम ये जान सको कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। अबू सुफियान ने कहा मेरे माँ बाप आप पर फिदा, آپ کتنے بردبار، کتنے کریم اور کتنے خویش پرور، یعنی رشتہ داروں کی خبر گیری رکھنے والے ہیں۔ میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہوتا تو اب تک میرے کچھ کام آیا ہوتا۔ اس کو ہائی لائٹ کیجیے، یہ ہے اخلاق۔ زبان شیری ملک گیری، زبانیں میٹھی کر لیجیے، حق کڑوا ہے، زبان میٹھی رکھیے، لوگوں کو چبھے گا نہیں۔ اصول سخت رکھیے لیکن زبان نرم رکھیے۔ بہت بھاری انجیکشن بھی نرم ہاتھوں سے لگے تو درد نہیں ہوتا۔ پیارے نبی کی یہی سنت تھی کہ لوگوں کے لیے آپ کے دل میں محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ دشمن بھی دیکھیے، جو کل کے دشمن تھے آج آپ کی دوستیوں کے دم بھرتے دکھتے ہیں۔ خیر، آپ نے ابو سفیان کی جب بات سنی تو فرمایا، ابو سفیان تم پر افسوس، کیا تمہارے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کس قدر حلیم، کس قدر کریم اور کس قدر صلہ رحمی کرنے والے۔ اس بات کے متعلق تو اب بھی دل میں کچھ نہ کچھ کھٹک ہے۔ اس پر میں نے کہا، ارے گردن مارے جانے کی نوبت آنے سے پہلے پہلے اسلام قبول کر لو اور یہ شہادت و اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، ابو سفیان اعزاز پسند ہے، لہٰذا انہیں کوئی اعزاز دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، جب ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے، اور جب اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ کیا سیکھا؟ انزل الناس منازلہم۔ رہبر کامر میں آپ کے فاتح ہونے کے واقعے میں بھی یہی بات ہم نے پڑھی کہ کیسے آپ لوگوں کو عزت دیا کرتے تھے۔ تو کچھ لوگوں کو صرف اوپر اوپر سے بھی عزت دینی پڑے تو دیجئے، کوئی ضروری تو نہیں کہ آپ دوبارہ ان کو دل کے قریب کیجئے، ان کو اتنی قربت میں لے آئیے کہ دوبارہ وہی دھوکے کھائیں جو پہلے کھائے، دوبارہ وہی غلط فہمیاں ہوں جو پہلے ہوئیں۔ لیکن یاد رکھیے، تکلف بھی اچھا ہوتا ہے، کبھی کبھی مروت بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو لوگوں کو بس اچھی سی عزت دے کر، ان کو اس حد تک رکھ کر کہ جس سے آپ کے دین کا نقصان نہ ہو، اچھا تعلق رکھنا، یہ بھی اس بات سے سمجھ آتی ہے۔ اسلامی لشکر مرہ زہران سے مکہ کی جانب، اسی صبح یعنی منگل 17 رمضان سن 8 ہجری کی صبح، ٹیوزڈے 17 رمضان 8 ہجرا کی صبح تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرہ و زہران سے مکہ روانہ ہوئے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو وادی کی تنگی والے علاقے پر پہاڑ کے ناکے کے پاس روک رکھیں تاکہ وہاں سے گزرنے والی خدائی فوجوں کو ابو سفیان دیکھ سکیں۔ یعنی یہ اوپر ایک گھاٹی سی تھی کہ جہاں سے لشکر دکھ رہا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ ادھر قبائل اپنے اپنے پھریرے لیے گزر رہے تھے، پھریرے سے مراد یہ کہ ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر ایک ٹروپ کی صورت میں گزر رہے تھے۔ جب وہاں سے کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتے کہ عباس یہ کون لوگ ہیں؟ جواب میں حضرت عباس بطور مثال کہتے کہ بنو سلیم ہیں، تو ابو سفیان کہتے کہ مجھے سلیم سے کیا واسطہ۔ پھر کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ پوچھتے کہ عباس رضی اللہ عنہ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہتے مزینہ ہیں۔ ابو سفیان کہتے مجھے مزینہ سے کیا مطلب؟ یہاں تک کہ سارے قبیلے ایک ایک کر کے گزر گئے۔ جب بھی کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان عباس رضی اللہ عنہما سے ان کے بارے میں ضرور پوچھتے، اور جب اسے بتاتے کہ وہ کہتے کہ یہ فلاں بن فلاں، تو وہ کہہ دیتے کہ مجھے فلاں بن فلاں سے کیا واسطہ۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سبز دستے کے جل میں، یعنی سبز رنگ کا جھنڈا تھا یا جو بھی ان کے لباس تھے، آپ مہاجرین و انصار کے درمیان فروکش تھے، یعنی وہاں رکے، یا انسانوں کی بجائے صرف لوہے کی باڑ دکھائی پڑ رہی تھی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا، سبحان اللہ، اے عباس رضی اللہ عنہ، یہ کون لوگ ہیں؟ उन्होंने कहा, ये अंसारों महाजरीन के जुलूब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं। अबू सुफियान ने कहा, भला इनसे महाजराई की ताकत किसे है? इसके बाद उन्होंने मज़ीद कहा, अबुल फजल, तुम्हारे भतीजे की बात चाहत तो वल्लाह बड़ी ज़बरदस्त हो गई। बस बादशाहत को नोट कीजिएगा, अभी तक दिलों में यही था कि नबुवत की जगह ये तो कोई तख्त लेने की बातें हैं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अबू सुफियान, ये नबुवत है? अबू सुफियान ने कहा, हाँ अब तो यही कहा जाएगा। यानी बड़ी देर की मानते मानते, ये कह लीजिए क्या पता चला। जो लोग आपको एक अरसा तक झुटला चुके होते हैं ना, फिर उनको ये तस्लीम करना बहुत मुश्किल लगता है कि अल्लाह ने आपको भी इज़्ज़त दे दी। इस मौके पर एक वाक़या और पेश आया। अंसार का भरेरा हज़रत साद बिन उबादा रदी अल्लाहु अन्हु के पास था। वो अबू सुफियान के पास से गुज़रे तो बोले, अल्यौमु यौमुल मुलहमतु अल्यौमु तस्तहिल्लुल हुरमतु, आज खून रेजी और मारधाड़ का दिन है, आज हुरमत हलाल कर ली जाएगी। आज अल्लाह ने कुरैश की ज़िल्लत मुकद्दर कर दी है। और इसके बाद जब वहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे तो अबू सुफियान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपने वो बात नहीं सुनी जो साथ ने कही? आपने फरमाया, साथ ने क्या कहा? अबू सुफियान ने कहा, ये और ये बात कही, यानी ये और ये बात कही गई। ये सुनकर हज़रत उस्मान और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाहु अन्हुमा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें ख़तरा है कि कहीं साथ कुरैश के अंदर मार धाड़ ना मचा दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि आज का दिन वो दिन है जिसमें काबे की ताज़ीम की जाएगी, आज का दिन वो दिन है जिसमें अल्लाह कुरैश को इज़्ज़त बख्शेगा। इसके बाद आपने हज़रत साद के पास आदमी भेजकर झंडा इनसे ले लिया और इनके साहिबजादे कैस रदी अल्लाहु अन्हो के हवाले कर दिया। गोया झंडा हज़रत साद के हाथ से नहीं निकला, और कहा जाता कि आपने झंडा हज़रत ज़ुबैर के हवाले कर दिया था। आप में से कुछ साथी सोच रहे होंगे कि झंडे का क्या सवाल है। तो पहले दौर में जंगों में जीतने वालों के झंडे की बड़ी इज्जत थी, और मुखालिफ कौम अमूमन दूसरे के झंडे को नीचे गिराना चाहती थी। कोया कि आप कह लीजिए कि आज के दौर में जैसे कि किसी के कौमी परचम की तकदीस और उसकी इज्जत, उस मुल्क की इज्जत समझी जाती है, और कोई डिसिप्लिन निज़ाम तो था नहीं, तो लोग इसी तरह अपने अपने झंडे ले लेकर अपने आप को दूसरों से नुमाया करते थे। अब अगला स्टेप क्या है कि इस्लामी लश्कर अचानक कुरैश के सिर पर। अभी तक तो आप देख रहे हैं ना कि टूवर्ड्स मक्का जर्नी चल रहा था, अब बिल्कुल मक्का में पहुंचने वाले हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सुफियान रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास से गुज़र चुके तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इनसे कहा, आप दौड़कर अपनी कौम के पास जाओ। अबू सुफियान रज़ी अल्लाहु अन्हु तेज़ी से मक्का पहुँचे और नहायत बुलंद आवाज़ से पुकारा, कुरैश के लोगों, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आपके पास इतना लश्कर लेकर आए हैं कि मुकाबले की ताब नहीं, लिहाजा जब अबू सुफियान के घर घुस जाए उसे अमान है। ये सुनकर इसकी बीवी हिंद बिन उतबा उठी और इसकी मूछ पकड़कर बोली, मार डालो इस मुश्क की तरह चर्बी से भरे हुए पतली टांगों पतली पिंडलियों वालों को। ये सुनकर उनकी बीवी हिंद बिनते उत्बट उठी और उसकी मूछ पकड़कर बोली, मर डालो इस मश्क की तरह चर्बी से भरे हुए पतली पिंडलियों वाले को, बुरा हो ऐसे पेश रो खबर रिसां का। यानी गुस्सा किया, उस दौर की औरतें ऐसी ही बदतहजीब होंगी कि अपने शौहर को ऐसे बोलें। तो बहरहाल उनके ये जुमले अपने शौहर के लिए थे। अबू सुफियान ने कहा, तुम्हारी बर्बादी हो, देखो तुम्हारी जानों के बारे में ये औरत तुम्हें धोखे में ना डाल दे। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उस वक़्त क्योस हुआ होगा। ज़रा से तसव्वुर में लाइए बातों को, रियलिटी बेस्ड करके देखिए। तो एक बहुत बड़ा सानहा था, एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी उस दौर की, लेकिन बहरहाल ये तो होना ही था। खैर, अबू सुफियान ने जब ये बात कह दी कि औरत तुम्हें धोखे में ना डाल दे, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा लश्कर लेकर आए हैं जिससे मुकाबले की ताप नहीं, इसलिए जब अबू सुफियान के घर में घुस जाए उसे अमान है, लोगों ने कहा, अल्लाह तुझे मारे, तेरा घर हमारे कितने आदमियों के काम आ सकता है। अबू सुफियान ने कहा, और जो अपना दरवाज़ा अंदर से बंद कर ले इसे भी अमान है, और जो मस्जिद हराम में दाखिल हो जाए उसे भी अमान है। ये सुनकर लोग अपने अपने घरों और मस्जिद हराम की तरफ भागे। अलबत्ता अपने कुछ ओबाशों को लगा दिया और कहा कि इन्हें हम आगे किए देते हैं, अगर कुरैश को कुछ कामयाबी हुई तो हम इनके साथ हो रहेंगे, और अगर इन पर ज़र्ब लगी तो हमसे जो कुछ मुतालबा किया जाएगा मंजूर कर लेंगे। कुरैश के याहमक ओबाश मुसलमानों से लड़ने के लिए इकरमा बिन अबी जहल, सुफवान बिन उमैया और सुहैल बिन अमर की कमान में खंदमा के अंदर जमा हुए। इनमें बनु बिकर का या बनु बकर का एक आदमी हम्मास बिन कैस भी था, जो इससे पहले हथियार ठीक 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 ठाक करता रहता था, जिस पर इसकी बीवी ने एक रोज़ कहा, ये काहे की तैयारी है जो मैं देख रही हूँ। उसने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों से मुकाबले की तैयारी है। इस पर बीवी ने कहा, खुदा की कसम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों के मुकाबिल कोई चीज़ ठहर नहीं सकती। उसने कहा, अल्लाह की कसम मुझे उम्मीद है कि मैं इनके बाद साथियों को तुम्हारा खादम बनाऊंगा। इसके बाद कहने लगे, अगर आज वो मद्दे मुकाबिल आ गए तो मेरे लिए कोई उज़र ना होगा। ये मुकम्मल हथियार, दराज़नी वाला नेज़ा और छठ सोनती जाने वाली दो धारी तलवार है, यानी अपने असलहे पे मान कर रहे हैं। और आप देखिए, यहाँ से देखिए कि उस वक्त भी दुश्मनों को यकीन था कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरा देंगे, लेकिन अल्लाह अपने काम करके रहता है और अल्लाह को कोई रोक नहीं सकता। और खंदमा की लड़ाई में भी यही शख्स आया हुआ था। तो क्या पता चला कि अल्लाह के नबी के मक्का में दाखिल होने की खबर अबू सुफियान रदियल्लाहु अन्हु के ज़रिए फैलाई गई। अल्लाह अपने दीन के काम ले लेता है। जो बात अल्लाह के नबी ने कहनी थी वो इस शख्स के ज़रिए से कहलवा दी गई। अगला मरहला क्या है कि इस्लामी लश्कर ज़ी तुवा में, इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्राव ज़हरान से रवाना होकर ज़ी तुवा पहुँचे। इस दौरान अल्लाह के बख्शे हुए एजाज़ फ़तह पर फरते तवाज़ो से आपने अपना सर झुका रखा था, यानी बहुत डाउन टू अर्थ थे, यहाँ तक कि दाढ़ी के बाल कजावे की लकड़ी से जा लग रहे थे। ज़ी तुवा में आपने लश्कर की तरतीबो तकसीम फरमाई। खालिद बिन वलीद को दाएं पहलू पर रखा। इसमें असलम, सुलेम, गिफार, मुजैना, जोहैना और कुछ दूसरे कबाइल अरब थे। और खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि वो मक्का में ज़ेरी हिस्से से दाखिल हों, और अगर कुरैश में से कोई आड़े आए तो इसे काट कर रख दें, यहाँ तक के सफ़ा पर आपसे आ मिलें। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम बाईं पहलू पर थे। इनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरेरा था। आपने इन्हें हुक्म दिया कि मक्का में बालाई हिस्से यानी कदा से दाखिल हों, और हजून में आपका झंडा गाड़ कर आपकी आमद तक वहीं ठहरे रहें। हज़रत अबू उबैदा पैदल पर मुकर्रर थे, यानी जो लोग पैदल चल रहे थे तो ये उनके ऊपर अमीर थे। आपने इन्हें हुक्म दिया कि वो बतने वादी का रास्ता पकड़ें, यहाँ तक कि मक्के में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे उतरे, और इस तरह फिर मक्का में इस्लामी लश्कर का दाखिला होता है। इन हिदायत के बाद तमाम दस्ते अपने अपने मुकर्रर रास्तों पर से चल पड़े। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु और इनके रफ़क़ा की राह में जो मुशरिक भी आया इसे मिटला दिया गया। अलबत्ता इनके साथियों में से भी कुर्स बिन जाबिर फहरी और खुनैस बिन खालिद बिन रबिया ने जाम शहादत नोश किया। वजह यह हुई कि ये दोनों लश्कर से बिछड़ कर एक दूसरे रास्ते पर चल पड़े, और इसी दौरान इन्हें कत्ल कर दिया गया। खंदमा पहुँच कर हज़रत खालिद और इनके साथियों की मुठभीड़ कुरैश के उबाशियों से हुई। मामूली सी झड़प में 12 मुशरिक मारे गए, और इसके बाद मुशरिकीन में भगदड़ मच गई। हम्मास बिन कैस, जो मुसलमानों से जंग के लिए हथियार ठीक ठाक करता रहता था, भागकर अपने घर में जा घुसा और अपनी बीवी से बोला, दरवाज़ा बंद कर लो। उसने कहा, वो कहाँ गया जो तुम कहा करते थे, यानी आज तो सभी बातें बदल गई। तो जवाब सुनिए, और अब यहाँ से मरूब हों कि अरब आम बातें भी शेरों की सूरत में कहते थे, क्या अशआर है इनके। اگر تم نے جنگ خندمہ کا حال دیکھا ہوتا جبکہ صفوان اور اکرمہ بھاگ کھڑے ہوئے اور سونتی ہوئی تلواروں سے ہمارا استقبال کیا گیا، جو کلائیاں اور کھوپڑیاں اس طرح کاٹتی جا رہی تھیں کہ پیچھے سوائے ان کے شور و غوغا اور ہم ہما کے کچھ سنائی نہیں پڑتا تھا، تو تم ملامت کی اتنا بات نہ کہتی؟ ایسے لگتا ہے کہ عرب عورتیں بھی ذرا جلدی میں مردوں کو کچھ نہ کچھ کہہ دیتی تھی، اور مرد بیچارے عورتوں کی باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہوتے۔ خیر، اس کے بعد حضرت خالد مکہ کے گلی کوچوں کو رونتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ ادھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ہجون میں مسجد فتح کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا گاڑا اور آپ کے لیے قبا نصب کیا، پھر مسلسل وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آج کی زبان میں بہت بڑا کام ہو گیا، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اللہ نے اتنا بڑا کام لے لیا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کوئی بڑا کام لے لے۔ آپ کو مجھے آج کے دور کی ضرورت کو پہچاننا ہے، ہم جو ہیں وہ وہی رہیں گے۔ نیت ارادے کر لیجئے، آپ دل میں چپکے سے ارادے کریں گے اللہ آپ سے بھی کوئی نہ کوئی کام لے گا، تو آپ دیکھیے کہ اس کے بعد کا سین انشاءاللہ مسجد حرام میں جانے کے بعد آپ کا بتوں کو توڑنا اور مکہ کو اور حرم کو شرک کی گندگیوں سے آلودگیوں سے پاک کرنا ہے۔ یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب سے بہترین طریقے سے راضی ہو جائے۔